मेरे प्रिय आत्मीय युवा साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 24 अगस्त 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अर्जुन सिंह, आप हरिद्वार उत्तराखंड से हैं, चंद्र कुमार अग्रवाल, आप गुना मध्य प्रदेश से हैं, अरुण सकवार, आप बीना मध्य प्रदेश से हैं, टीकम राजवाड़े, आप अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हैं और अनामिका दुबे, आप मैहर सतना मध्य प्रदेश से हैं। तो अर्जुन, चंद्र कुमार, अरुण, टीकम और अनामिका, आप 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी सूचना है और सूचना यह कि लगातार हम लोगों के पास जो क्लासेस 15 दिन की होने वाली हैं अभी अक्टूबर में, उसके बारे में बहुत सारे सवाल प्रश्न आते हैं। क्या क्या पढ़ाया जाएगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, और स्वाभाविक है कि इस तरह के सवाल ऐसे स्टूडेंट के मन में उठते ही हैं जो दूर रह रहे हैं, या अगर पास भी रह रहे हैं तो अपना घर बार छोड़कर के 15 दिन के लिए वो किसी दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो वेबसाइट है afeis.com, उसमें क्लासेस के बारे में सारी चीजें यथासंभव डिटेल्स में दी गई हैं। जो स्टूडेंट के प्रश्न हो सकते हैं वो परिकल्पना करके वो सारे उत्तर वहां दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ और प्रश्न रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लगातार सवाल आते रहते थे, तो उनके उत्तर के रूप में एक वीडियो YouTube पर डाला गया है, YouTube पर, जिसमें क्लासेस से संबंधित जो भी आप सबके मन में सवाल उठते हैं उनके उत्तर देने की कोशिश की गई है। तो इसलिए मैं अपने उन सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा जो लगातार ईमेल के जरिए हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि वो उस YouTube में मेरे उस वीडियो लेक्चर को सुने, बहुत से उत्तर उनको मिल जाएंगे और संभवतः शायद फिर कोई प्रश्न उनके मन में रहे भी ना। और वैसे भी इससे पहले भी जब आप लोग प्रश्न पूछते रहे हैं तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि जो हमारा ऑफिस है वो आपके उन प्रश्नों के लिखित जवाब ईमेल के जरिए आपको देने की हर संभव कोशिश करता है। मित्रों, ये छोटी सी सूचना थी। अब आज के विषय के बारे में, फ्रेंड्स, आज हम लोग जरा सा प्रशासन में सुधार, इस विषय पर थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। मुझे ये विषय बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है, खासकर अभी के संदर्भ में, और क्यों लग रहा है इसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। तो आइए अब हम कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, रेडियो न्यूज में भी और दूरदर्शन के न्यूज में भी एक जो बड़ी खबर थी वो ये है कि हमारे जो रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी, उन्होंने अभी जो रेल हादसे हुए हैं, रेल एक्सीडेंट हुए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और त्यागपत्र देने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास वो गए थे और अनुरोध किया है कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने अभी उन्हें अपने पद पर बने रहने की बात कही है। इसके साथ ही साथ आपने ये भी सुना कि जो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, मतलब रेल की जो व्यवस्था है, पूरी रेलवे सर्विस भी होती है आपके सिविल सर्विस में, है ना, रेलवे की कई सर्विसेज में आप सिविल सर्विस के माध्यम से जाते हैं। रेलवे ट्रैफिक सर्विस होता है, रेलवे अकाउंट सर्विस होती है, रेलवे पर्सनल सर्विस होती है ना। फिर रेलवे में जाने के लिए इंजीनियरिंग का एक अलग विंग है जिसमें इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से आप रेलवे में जाते हैं। तो उनको लेकर के एक बोर्ड बनता है और वो बोर्ड फिर अपने पूरे रेलवे का मैनेजमेंट करते हैं, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं। तो इसी दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए उसके बोर्ड के जो चेयरमैन थे मिस्टर मित्तल, उन्होंने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। इससे पहले भी आपने खबरें सुनी थी कि कुछ और लोगों को हटाया गया, ट्रांसफर किया गया। तो यह भी एक प्रशासन में सुधार का एक बिंदु है और यहीं से मैंने आज का विषय उठाया है, है ना। तो आप इस पर हम लोग उस मुख्य विषय के तहत बात करेंगे। मित्रों, इसके बाद जो दूसरी जो एक बड़ी खबर है सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से, वह है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसमें क्रिमी लेयर, आप जानते हैं कि दूसरे में क्रिमी लेयर की बात नहीं है। आप देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जो रिजर्वेशन है उसमें क्रिमी लेयर की बात नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ओबीसी में क्रिमी लेयर निर्धारित किया गया है। यानी कि एक पर्टिकुलर आय से ऊपर के लोगों को, चाहे वो ओबीसी में ही क्यों नहीं हो, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अभी तक ये जो राशि थी, दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं ओबीसी के बारे में। पहली तो ये कि अभी तक जो आय की सीमा थी वो 6 लाख रुपए वार्षिक थी, यानी कि जिस परिवार की आय 6 लाख रुपए वार्षिक से अधिक होगी वो ओबीसी के आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा। अब उसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है, यानी कि 8 लाख रुपए से नीचे की आय के का परिवार अब ओबीसी का आरक्षण प्राप्त कर सकता है। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि ये जो सीमा बढ़ाई गई है ये फर्स्ट टाइम नहीं है, चौथी बार ऐसा हुआ है। जब 1993 में जब लागू किया गया था तब तो 1 लाख रुपए इसकी सीमा थी, इसके बाद फिर लगातार बढ़ाया जाता रहा है। लास्ट जो बढ़ाया गया था वो 2013 में बढ़ाया गया था, जब 4.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया था, और अब उसे 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। स्वाभाविक है और ये बहुत व्यावहारिक भी है, क्योंकि अगर मुद्रा स्फीति होती, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसी के अनुकूल इसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर है दोस्तों वो ये है कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब वो एक कमेटी बना रहा है, एक आयोग बना रहा है, जो इन आरक्षण वर्ग में जो है उसमें भी एक सब कैटेगरी की पहचान करेगा। मतलब ये देखा गया है, इसके पीछे रीजन ये है कि ओबीसी का जो लाभ है वो कुछ जो मजबूत वर्ग हैं, ओबीसी में भी मतलब हर जाति में आप देखिए कुछ लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो जो मजबूत वर्ग है वही इसका फायदा उठा रहे हैं, और उसी वर्ग में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अभी भी एकदम पिछड़ी हैं। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में सरकार से कहा था कि वो सब कैटेगरी बनाए, उपश्रेणियां बनाए, लेकिन चलिए कुछ नहीं हुआ। तो अब सरकार ने सब कैटेगरी बनाने का निर्णय लिया है और उसके लिए बकायदे व्यवस्था कर दी गई है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इससे पहले सब कैटेगरी बनाने के लिए बात कही थी। संसद की जो समिति होती है उसने भी यह बात कही थी, और अब उस पर यह कदम उठाया जा रहा है। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की राशि कर देना, और दूसरा सब कैटेगरी बनाने की बात कही गई है, जो लगभग 2.5-3 महीने में आयोग जो है अपनी रिपोर्ट दे देगा। ये दो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए सिविल सर्विस की दृष्टि से भी। अब देखिए इसकी समीक्षा है कि इससे क्या फायदा होगा। यहां एक बात तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगा फ्रेंड्स की, जैसे कि ये बात आई है आयोग के बारे में, पिछड़ा वर्ग के आयोग के बारे में, लेकिन यही बात हम दूसरे जो हमारे आरक्षण के क्षेत्र हैं जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उनके बारे में भी कुछ न कुछ कहा जा सकता है कि वहां भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं कि जिन्हें एक बार फायदा मिल गया है और जिनका परिवार संपन्न हो चुका है उन्हें आरक्षण न दिया जाए और उसके बदले में उसी वहीं उन्हीं जातियों से दूसरों को दिया जाए, तो इससे उसका क्षेत्र व्यापक होगा। और लगातार जब आरक्षण के बारे में बहस होती है तब ये मुद्दा उठाया भी जाता है। मित्रों, अब एक और खबर है और वो है बैंकों के विलय को लेकर के, कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसने बैंकों के हमारे जो विलय बैंकों के विलय की स्वीकृति दे दी है। आपको मालूम है कि हमारे जो नेशनल बैंक है लगभग 21 बैंक हैं जिसमें सरकार की सबका सबसे ज्यादा स्टेक है, अब उन्हें मिला करके ये करने की कोशिश है कि 10-12 बैंक बना दिए जाएं ताकि वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। मित्रों, इस पर मैं अभी ज्यादा चर्चा आपसे नहीं करूंगा। आपको यह भी ध्यान होगा कि कल इसी बात को लेकर के सरकार के इसी कदम के विरोध में मतलब जब सरकार लग रहा था यूनियंस को जो कि इस तरह का कोई निर्णय लेने वाली है सरकार, तो आपको मालूम है कि कल बैंक बंद रहे थे, मतलब एक हड़ताल किया गया था, यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं। मित्रों, तो ये बैंकों की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उठाया गया एक कदम है, और अब इसके लिए मंत्रियों की एक समिति बनाई जाएगी और फिर वो अपनी सिफारिशें करेगी। एक जो महत्वपूर्ण छोटी सी सूचना है आखिरी में, वो ये है फ्रेंड्स की प्राइवेसी पर आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है कि इनफैक्ट प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं। आपको ध्यान होगा कि इस पर हम लोगों ने पहले भी कुछ बातें की थी, तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है और उस पर फिर हम लोग बाद में बातें करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको पहले से सजेस्ट करूंगा कि इसके बारे में जो भी न्यूज खबरें आपको पढ़ने को मिलें, सुनने को मिलें, उन्हें ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें भी। दोस्तों अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। देखिए अभी मैंने चर्चा की थी कि रेल मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब एक सोचने की बात ये आती है दोस्तों कि रेल मंत्री ने के इस्तीफा देने का क्या मतलब है। वो तो ट्रेन चला नहीं रहे थे ना, वो कोई ट्रेन का की पटरियों का निरीक्षण कर रहे थे, उनकी देख रेख कर रहे थे, उनकी तो अपनी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दिया। ठीक इसी तरह से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने त्यागपत्र दिया, उनका भी सीधा कोई संबंध नहीं है। एक शब्द आपने इसमें सुना है, नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खासकर जब भी रेल के बारे में, दुर्घटना के बारे में बात होती है तो अक्सर कोट किया जाता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कि जब वे रेल मंत्री थे तब उनके समय में भी एक रेल दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तुरंत त्याग पत्र दे दिया था। अक्सर उनका नाम इस बारे में आता है। ये प्रशासन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, तो आपको इस पर तैयारी करनी चाहिए, इस पर थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए। मैं अभी इस पर विस्तार के साथ विचार करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा विषय अभी प्रशासन में सुधार है, तो मैं और कुछ बिंदुओं की तरफ आपको ले जा रहा हूं जो इस बीच में प्रशासन में सुधार किए जाने से संबंधित हुए हैं, उठाए गए हैं। मित्रों आज के ही अखबार में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, और ये महत्वपूर्ण सूचना क्या है, मतलब एक टू सम एक्सटेंट ए रिवोल्यूशनरी स्टेप है, और ये बहुत अच्छा कदम भी है, बहुत प्यारा कदम है। और वो ये है, ये रेडियो न्यूज में नहीं था, मुझे शायद दूरदर्शन न्यूज में भी ये बात नहीं बताई गई थी, और वह है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, अब ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो कैडर दिया जाएगा वह जोन के आधार पर दिया जाएगा, स्टेट के आधार पर नहीं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इससे पहले ऑल इंडिया सर्विस में, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इन सब में आपको कैडर दे दिया जाता था, एक कैडर एक पर्टिकुलर स्टेट, और आपको फिर पूरी लाइफ उसी स्टेट में सर्विसेज देनी होती थी, सेंटर में आप डेपुटेशन पर जा सकते थे। अब उन्होंने उसको जोन में बनाया है, टोटल 5 जोन बना दिए हैं, अब आप जोन अपनी प्रेफरेंस देंगे। ये मुझे लगता है कि प्रशासन में सुधार की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महत्वपूर्ण कदम इस मायने में है फ्रेंड्स कि होता क्या था कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां सच पूछे तो लोग अपना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या कुछ स्टेट जहां उनको प्रॉब्लम लगती है। तो होता क्या है कि अब वहां जो ऑफिसर भेजे जा रहे हैं वो ऑफिसर हैं जिनको जाना ही है, क्योंकि अब वो आईएएस आईपीएस में आ गए हैं और बड़े अनमने भाव से जाते हैं, और उनके साथ संकट ये है मानसिक स्थिति, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर, कि उन्हें लगता है कि अब तो पूरी जिंदगी यही गुजरनी है, अब तो इससे कोई छुटकारा नहीं है। तो जाते स्टेट में फिर लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे सेंटर में डेपुटेशन पर जाएं, सेंटर में डेपुटेशन पर जाएं। ये एक बहुत बड़ा संकट है। तो अब कम से कम उनका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा व्यापक होगा। व्यापक इस मायने में होगा कि जैसे मान लीजिए आपको एक जोन मिल गया और उस जोन में चार पांच स्टेट्स हैं, तो ठीक है उसमें एक स्टेट थोड़ा सा आपके नापसंद का है तो आप दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, तीसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक स्तर पर सुविधा हुई ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के साथ। दूसरी जो बड़ी सुविधा है मुझे लगता है प्रशासन में सुधार की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, और वो ये कि कम से कम एक जो ऑफिसर है वो दूसरे स्टेट में भी मूव कर रहा है, वहां की समस्याओं को भी जान रहा है, समझ रहा है, वहां से भी वो अनुभव लेकर के आ रहा है, तो उसका जो अनुभव जगत है वो अनुभव जगत कंपैरेटिवली व्यापक होगा, तुलनात्मक रूप से ज्यादा सही होगा, मतलब उसको बड़े स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। जैसे आप हमारे छोटे छोटे स्टेट ले लीजिए, जो स्टेट बहुत छोटे हैं, आप उस कैडर में चले गए, अब वो छोटे से स्टेट में ही आप काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, और अगर आपने सेंट्रल डेपुटेशन नहीं लिया तो जो अनुभव का दायरा है, अनुभव का दायरा कहीं ना कहीं तो सिमट जाता है। तो दोस्तों इस दृष्टि से भी मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। फ्रेंड्स और भी कदम उठाए गए हैं प्रशासन में सुधार के लिए। इस बीच में आप देखिए कि सरकार ने और कदम उठाए हैं कि ऑफिसर्स को बीच में निकाला जा सकता है, इम्पैनलमेंट कैसे होगा, उन पर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं अब बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आज के अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा भी हो कि जोन कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आपके सीधे काम की चीज है। हालांकि ये सूचनात्मक ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो अब 5 जोन बनाए गए हैं, उन जोन के आप स्टेट देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए तो आपके दिमाग में थोड़ी सी तस्वीर रहेगी। जो पहला जोन बनाया गया है उसमें स्टेट देखिए कि कौन कौन से हैं। उसमें 7 स्टेट के कैडर्स और AGM ड्यूटी को भी मिला दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ये एक जोन बनाया गया है। आप जोन 1 अगर प्रेफरेंस देते हैं और आपको अगर आपका प्रेफरेंस मिल जाता है तो इतने राज्यों में काम करने का आपको मौका मिलेगा, जो बहुत अच्छी और बड़ी बात है। दूसरा आप देखिए, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये दूसरा जोन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, आपको जोन 2 में 4 स्टेट्स में काम करने का मौका मिलेगा। जोन 3 में भी 4 स्टेट हैं और वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बाद जोन 4 में जो स्टेट्स हैं दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। और इसके बाद 5वें जोन में है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो ये 5 जोन बनाए गए हैं। सच पूछे तो ये जो जोन वाली बात है मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। इससे थोड़ा सा क्षेत्र व्यापक हो सकेगा, तो आप इसे भी प्रशासन के सुधार की दिशा में उठाया गया एक कदम मान सकते हैं। इसके बाद आपने ध्यान दिया होगा कि करंट कंटेंट के तहत हम लोग ने एक आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया है, पार्श्व प्रविष्टियां, लेटरल एंट्री, ये भी प्रशासन के सुधार की दिशा में काम किया जा रहा है कि ठीक है आप आईएएस मतलब एक कैडर के थ्रू आप आ रहे हैं सेवा में आइए, लेकिन सरकार जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बीच से भी लेकर के आएगी और उन्हें बाकायदे सेवा का अवसर देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब केवल रिक्रूटमेंट के इस यूपीएससी के रिक्रूटमेंट के तहत ही जो आ गए हैं वही जीवन भर सेवा में रहेंगे, वो तो रहेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर से दूसरों को नहीं लिया जा सकता, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लेटरल एंट्री। तो इस तरह से कुछ सुधार करने की कोशिश हो रही है और इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ये मेंस में भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आता क्या हूं, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर बातचीत करने का अवसर रहता नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से मित्रों देख लेंगे। अब है ईमेल का चरण, तो सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ साथियों के नाम हैं रजनीकांत भारद्वाज, रणवीर तिवारी, योगिता साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से, पुरुषोत्तम धापते पुणे महाराष्ट्र से, पीयूष अग्रवाल अमृतसर पंजाब से, नवीन रोहिल्ला और गौरव सिन्हा बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।